को डॉक्टर विवेकानंद जी।
हरे कृष्णा। एक सेकेंड में आरंभ करूंगा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का दोबारा इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। और सबसे आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो है, कई बार वो प्रश्न आया है, ओनली चाइल्ड सिंड्रोम। बार बार ये प्रश्न को कई बार रिपीट भी किया गया है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये प्रश्न सबके मन में है, इसलिए मैं सबसे पहले उसको एड्रेस करूँगा। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो सिंगल चाइल्ड का है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, रिसोर्स भी नहीं है और एनर्जी भी नहीं है बच्चों को एक से दो से अधिक संभालने के लिए।
आपका ऑडियो म्यूट हो गया है।
मेरा ऑडियो म्यूट हो गया है, अभी ठीक है?
हाँ, अब आवाज आ रही है, थैंक यू।
हाँ, मे भी आपके सबके ऑडियो म्यूट करने के एफर्ट में मेरा भी म्यूट हो गया है। ऐसा लगता है। Like continue or you will correct this one?
How do you start कर सकते हैं आवाज आ रही है?
ओके, सो एक ही बच्चा होने का कारण क्या है? क्योंकि दोनों माता पिता, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों पढ़े लिखे हैं, उन्होंने करियर भी करना है, दोनों वर्क भी करते हैं प्रोफेशनली, और बच्चों को समय देने के लिए इतना समय उनके पास नहीं है, तो एक बच्चे के लिए समय नहीं, दो बच्चों को कैसे समय देंगे? इसलिए एक बच्चा चाहिए, इसलिए बच्चा है, लेकिन वो भी सर्वेंट के पास में है, मैं ऑफिस में हूँ, मेरा पति भी ऑफिस में है, ये उसका मेन कारण है। नहीं तो मैं, अगर आप पूछेंगे मुझे, तो मैं, मेरे घर में सातवां बालक हूँ, आई एम द लास्ट वन इन सेवन। हाँ, मेरी जो बड़ी बहन है वो मेरी दूसरी माँ है, क्योंकि वो मुझसे 16 साल बड़ी है। और मेरे पिताजी एक सिंपल दुकानदार थे, मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, और कैसे उन्होंने हमको इतने सात लोगों को एक साथ बड़ा किया, उसमें दो डॉक्टर्स हैं, सब लोग ग्रेजुएट हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। हाँ, कैसे उन्होंने संस्कार दिए, कैसे बड़ा किया, कैसे फाइनेंशियली मैनेज किया, वो एक बड़ा थीसिस का विषय है, पीएचडी का विषय है। तो वो जो मेंटेलिटी थी, माइंडसेट था ना, वो आज नहीं रहा। वो कोई फैमिली प्लानिंग का कोई विचार नहीं था उस समय, क्योंकि टैबलेट खानी है, कुछ लूप लगाना है, कुछ लगाना है, कुछ भी कोई था ही नहीं, नो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अभी मैं जब बना हुआ तो माता ने कहा कि बस अभी बहुत हो गया, अभी आई कैन नॉट मैनेज एनी मोर, तो फिर उनका टीएल किया गया, ट्यूबल लैगेशन। वो एक ऐसा, बहुत होने के बाद में, 10-11 होने के बाद में वो ट्यूबल लैगेशन करते थे, बायलैटरल ट्यूबल लैगेशन, तो इसलिए मेरे बाद कुछ बच्चे नहीं हुए। लेकिन बच्चों को रोकने के लिए कोई विधि नहीं थी उस समय, तो ये हमारी संस्कृति थी, अभी आज नहीं रही वो। और दो बच्चे हुए तो सब लोग ओके कहते हैं, और तीन बच्चे हुए तो आईब्रोज रेज करते हैं, अरे तीन बच्चे, यू हैव 3 चिल्ड्रन। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, अभी आई सपोज दैट वी आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर वैदिक संस्कृति इज फॉलोड, हम लोग वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले देश में रहते हैं, इसलिए वैदिक संस्कृति पालन करने में हमको संकोच या शर्म नहीं होनी चाहिए। आप वैदिक शास्त्र फॉलो करते हो क्या? एंशंट जमाने का बात करते हो? कितने आपकी ऑर्थोडॉक्स पुरानी थिंकिंग है, थोड़ा मॉडर्न बना करो। ऐसे सोचने से क्या होता है, मैं मेरी वैदिक जो माइंडसेट है उसको हाइड करता हूँ, क्योंकि तो आम जनता तो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो मैं कैसे मेरी वैदिक संस्कृति को सबके सामने प्रकट करूंगा, ये मेरी धारणा होती है। लेकिन वैदिक संस्कृति में ये फैमिली लाइफ जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। पुराने जमाने में एक बच्चे को बड़ा करने के लिए नाना नानी, दादा दादी, कई चाचाएं, कई ताऊ जी, कई ताई जी, कई चाची जी, बुआ जी, ये सब लोग लगते थे, एक परिवार में रहते थे। कभी कोई बीमार हो गया तो इसको कौन देखेगा, अभी मैं तो काम पे जा रही हूँ, ऐसा कोई था ही नहीं, बिकॉज सब सबका सपोर्ट घर में था। इसलिए कभी उनको ऐसा बच्चों को महसूस नहीं हुआ कि आई एम अलोन, हु विल प्ले विथ मी, मम्मा आप खेलो ना मेरे साथ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ढेर सारे मम्मी पापा थे घर पे, बड़े मम्मी पापा, बड़े छोटे मम्मी पापा, उनके सब बच्चे, इतने सारे टीम हुआ करती थी, क्रिकेट की टीम ही घर पे हुआ करती थी, अपने आप में ही खेलते थे वो, और बढ़िया परवरिश होती थी उनको, कभी लोनली फीलिंग नहीं हुआ, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुई और वो बैलेंस पर्सनैलिटी बने, एडजस्टिंग बने, शेयरिंग बने, हर चीज बने वो। और आज ये सब खत्म हो चुका है और ये रियलिटी है, और हमको उसका भी सामना करना है। ऐसा नहीं कि अपने आप को कोसना है और वो सिस्टम को कोसना है। यस, टुडे आई एम प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑनली हैविंग वन चाइल्ड। मेरे घर में मम्मी पापा भी मेरे नहीं है देखने के लिए, और मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे पति भी वर्किंग है, और मेरे पास एक बच्चा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को होती है लोनलीनेस की, वो बहुत लोनली महसूस करता है, और वो बार बार मेरे पास, अभी फिलहाल कई ऐसे कपल्स हैं जिनके पास एक ही बच्चा है, और मुझे वो बार बार आके बताते हैं, प्रभु जी माई बे डॉटर इज टेलिंग मी, पापा भाई कब लेके आओगे, पापा मेरी सिस्टर कब लेके आओगे, पापा मुझे खेलना है उनके साथ में, तो आप इनके साथ खेलो ना, ये लड़की है वो आपकी फ्रेंड है। नहीं पापा, मुझे मेरी सिस्टर चाहिए, मुझे मेरे घर पे मेरा भैया भैया चाहिए, मेरी सिस्टर चाहिए, मैं उसको गोद खिलाऊंगी, मैं उसको प्यार दूंगी, मैं उसको नहलाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। तो फाइनली अभी एक कपल ने क्या किया है, मैं आपको, इट इज बेटर टू टेल रियल लाइफ स्टोरीज, आपको ज्यादा उसका परपोर्ट मिलेगा, तात्पर्य मिलेगा उसमें। तो फाइनली इतना सारा होने के बाद भी लड़की यहाँ बहुत ज्यादा उधम कर रही है, क्रोध बढ़ रहा है उसके अंदर, क्योंकि तो उसकी इच्छा फुलफिल नहीं हो रही है, तो वो बहुत अपसेट हो रही है, और बार बार कहने पर भी मम्मी पापा नया बेबी लेके नहीं आ रहे, तो वो एंग्री है। इसलिए आने जाने वाले लोगों से ना वो बहुत एग्रेसिवली बिहेव करती है, कोई किसी ने बेल बजाया ना तो दरवाजा खोलती है और पहले पूछती है आप कौन हो, आप क्यों आए हो यहाँ पर, किसने बुलाया आपको, चालू कर देती है तुरंत, शी स्टार्ट्स दैट ओनली। सो देयर पेरेंट्स आर अपसेट नाउ व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि मदर विल लीव द जॉब, हमारे यहाँ ही काम करती है भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, शी विल लीव हर जॉब एंड शी विल फोकस ऑन हैविंग अ सेकेंड चाइल्ड, क्योंकि काम भी इतना स्ट्रेसफुल है कि सेकेंड चाइल्ड, प्रेगनेंसी, ये सब होने के लिए वातावरण अनुकूल ही नहीं है, इतना स्ट्रेसफुल है, इतना थक जाते हैं दोनों, तो वो कभी माइंडसेट बनेगा कि मुझे अभी प्रेग्नेंट होना है, उसके लिए माहौल ही नहीं है। तो उन्हें डिसीजन लिया है, ओके करियर को अभी बाजू में रखो, पहले परिवार को देखो, ऑलवेज फैमिली फर्स्ट करियर आफ्टरवर्ड्स। तो फिर उन्होंने भी सोचा है कि अभी जॉब को रिजाइन दे दिया है, नोटिस दे दिया है, उसके बाद में वो गांव जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेस लेवल को रिलीज करेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे, आयुर्वेद का मसाज लेंगे, केरला में आयुर्वेद का पंचकर्म करेंगे, फिट हो जाएंगे, फिर यू विल हैव अ चाइल्ड। ये सब प्रक्रिया में भी 1-1.5 साल चला जाएगा, और बच्चा आने में 2 साल चले जाएंगे, तब तक बच्ची और 2 साल बड़ी हो जाएगी, और थोड़ा डिमांड करेगी और मारामारी करेगी, लेकिन कम से कम समझाएंगे कि आएगा आएगा अभी आएगा अभी आएगा। सो लोनलीनेस इज अ किलर किलर थिंग, उसलिए उसके लिए उसके वजह से बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो क्रिपल्ड हो जाती है, विकृत हो जाती है, अपाहिज हो जाती है उसकी मनोवृत्ति। उसको अपना प्यार बांटना है लेकिन बांटने के लिए कोई है नहीं बोनाफाइड व्यक्ति, ये चीज है। दूसरी बात, जब वो अकेला होता है तो उसको बहुत पैम्पर किया जाता है, क्योंकि आप माँ हैं, आप पिताजी हैं, और आपके लिए एक ही बालक है, आपकी सारी दुनिया, आपका कुल दीपक तो एक ही है वो, और कोई है ही नहीं आपके सामने, तो उसको कम डांट पड़ती है, बहुत ज्यादा पैम्परिंग होता है, जिसकी हर इच्छा को पूरी की जाती है, तो उसे क्या होता है, उसका एक पर्सनैलिटी बनता है, मैं जो भी कुछ कहूंगा ना उनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं लात मारूंगा, नीचे जमीन पे सो जाऊंगा, चिल्लाऊंगा, दरवाजा को पटकाऊंगा, बॉल फेंक दूंगा, घर से खिड़की से बाहर चीजें फेंक दूंगा और इनको मजबूर करूंगा कि बेटर यू गिव मी व्हाट आई वांट, अदरवाइज आई विल नॉट स्टॉप हियर। ये उसको पता हो जाता है, ही नोज हिज टैक्टिक्स हाउ टू गेट थिंग्स। तो वो एक ऐसा माइंडसेट बनता है, मुझे जो चाहिए वो मिलना ही चाहिए, उसका एक माइंडसेट बनता है। फिर आगे जाके जब जिंदगी में फेलियर आते हैं या जिंदगी में उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है तो ही गोज इन डिप्रेशन, क्योंकि उसको बचपन से परवरिश क्या मिली है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलता है, लेकिन जिंदगी आगे जाकर उसको वो नहीं देने वाली ना, माँ बाप देंगे प्रेम से। जब माँ बाप के बूढ़े होने के बाद आप आगे बढ़ोगे लाइफ में तो जिंदगी आपको फेलियर भी देगी, आपका प्रमोशन शायद डिनाई किया जाएगा पॉलिटिक्स की वजह से, या आपका एग्जामिनेशन में आप फेल हो सकते हो, या आपको फॉरेन जाने का होगा तो नहीं मिल सकता है, मेनी थिंग्स में हैपन विच यू मे डिजायर। तो तब वो व्यक्ति जो है ना उसको झेल नहीं पाएगा, मेरे मन के जैसे चीजें नहीं हुई, आई कांट एक्सेप्ट इट, दिस इज नॉट माई अपब्रिंगिंग। हाँ, और लाइफ में कैसा होता है, अभी किसी ने प्रश्न पूछा है कि हाउ टू टेक फेल्यूअर्स इन लाइफ, हाँ, तो ये बच्चे जो है ना फेल्यूअर स्वीकार करने में बहुत कमजोर रहते हैं। तीसरी बात, ये लोग शेयर करने में बहुत कमजोर रहते हैं, वो सब कुछ मेरा मेरा और मेरा ऐसा करके रखते हैं। हाँ, बहन होगी भाई होगा तो शेयर करेंगे, लेकिन बाहर का कोई लड़का आएगा, बाहर का कोई नेबर का लड़का आएगा या रिश्तेदारों का लड़का आएगा तो उनको वो शेयर नहीं करेंगे और रड़े रोएंगे चिल्लाएंगे। तो एक बड़ी ये इशू है, कंपैशन एंड शेयरिंग एंड के टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, ये जो बातें हैं ना ये बचपन से ही व्यक्तिमत्व के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। और ये सिंगल चाइल्ड का ये इशू होते हैं बहुत सारे, और फिर पैम्परिंग की वजह से फिर उसका माइंडसेट ऐसा बनता है कि उसके डिमांड्स बढ़ते जाते हैं उसका, फिर बाद में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और जब वो तो जब भी वो पैम्पर्ड चाइल्ड समाज में आता है, समझो अभी आपकी बर्थडे पार्टी है, उसमें 25 बच्चे आए हुए हैं और एक पैम्पर्ड चाइल्ड भी वहां पर आया हुआ है, तो उसका जो व्यवहार है ना, उसका जो बिहेवियर है वो सबके सामने एक्सपोज हो जाता है कि क्या बच्चा है ये, कोई कल्चर नहीं इसको, देखो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या मम्मी पापा ने कोई ट्रेनिंग दिया नहीं उनको, इतना पैम्पर करके रखा है, दिखता है, दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इतना पैम्पर करके रखा है, तो एक सोशल एम्बेरसमेंट हो जाता है। और इतना प्रेम बच्चे पर है, कोई इकलौता बेटा बेटी है तो उसको मार भी नहीं सकते हैं, उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रोएगा, फिर चिल्लाएगा, फिर घर में तमाशा करेगा, तो करेक्ट करने के लिए भी सुविधा नहीं है और समाज के सामने एक्सप्लेन करने का भी कोई काम नहीं है। तो अ सिंगल लोनली पैम्पर्ड चाइल्ड बिकम्स कॉज ऑफ सोशल एम्बेरसमेंट। और आगे मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन स्पीकिंग टू यू, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वॉट टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं सुबह ही मेरी पत्नी से चर्चा कर रहा था कि क्या क्या आपके विचार हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे कि उन बच्चों को ना माता पिताओं को उनको समझा बुझा के नेबर्स के बच्चों के साथ में फिक्स टाइम को लेके जाना चाहिए, बताना चाहिए एक तो टॉयज लेके जा, उसके साथ शेयर कर, वो तेरी बहन जैसी है, यू हैव टू ट्रीट हर एज योर सिस्टर, एज योर फ्रेंड। और उनको लगातार फ्रेंड्स और नेबर्स के बीच में बिठाना चाहिए और अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए इंस्पायर करना चाहिए और समझाना चाहिए कि वो भी आपसे शेयर करेगी, आप भी शेयर करो, मैं आपको कुछ लड्डू देकर लेके जा रही हूँ, आप उनके सबके साथ शेयर करना, सबके लिए मैंने इक्वल लड्डू दिए हैं, आप उनको सबके साथ शेयर करना, आप भी एक खाना, ये खिलौने आपको दिए हुए हैं ये उनको देना, उनके आप लेना, अच्छी तरह से खेलना आप। तो उनको सहजीवन आपको सिखाना पड़ेगा, वो भी आपके पास एक ही बालक है इसलिए आपको एफर्टफुली करना पड़ेगा, वो विद प्लान करना पड़ेगा, योजनाबद्ध रीति से आपको करना पड़ेगा, नॉट बाय द वे टाइम मिलेगा तो मैं ले जाऊंगी, नहीं, आपको सोचना होगा कि मेरे को सेकेंड चाइल्ड होना मुमकिन नहीं है तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, आई विल डू दिस ओनली। तो बच्चे के अपब्रिंगिंग के अंदर विदाउट प्लान कुछ करना, फिर बंद हो गया, पता नहीं क्यों बंद हो रहा है अपने आप। मेरे ख्याल से होस्ट जो सबको म्यूट कर रहे हैं तो मुझे भी म्यूट कर रहे हैं बार बार। कोई बात नहीं, मैं आपको अपने को वापस अनम्यूट करते रहूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों के अपब्रिंगिंग में बिना प्लान से कुछ काम नहीं होता है। जैसे अभी आज आप सभी माताएं घर में बैठी हुई है, आपके मन में प्लानिंग है कि शाम को डिनर में क्या बनना है, वैसा एड हॉक बाय द वे 5 बजे किचन में जाऊंगे, देखूंगी क्या है, उसको बना दूंगी, कुछ ना तो खिचड़ी बना दूंगी, ऐसा नहीं होता है। वो प्लानिंग चलते रहता है कि मुझे ये बनाना है और मुझे ये इंग्रेडिएंट चाहिए, मेरा पति आएगा तो उसको खिचड़ी खाने को अच्छा लगेगा नहीं, मुझे उसको ये खिलाना होगा तो मैं जाके मार्केट में लेके आऊंगी और बना के रेडी रखूंगी, फिर बोथ ऑफ विल बी हैप्पी इन द इवनिंग। उसी तरह से ये तो मेरे डिनर की तो एकदम ऐसी अनइम्पोर्टेंट बात की मैंने, बच्चों की परवरिश में आप एड हॉक चीजें नहीं कर सकते। बच्चों की परवरिश में आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा कि मुझे बच्चे के लिए क्या करना है, कैसे करना है, और मुझे अगर 2 सेकंड बच्चे का प्लानिंग नहीं है तो मुझे कैसे उसको परवरिश देनी है, कैसे उसको शेयरिंग बनाना है, कैसे उसको फ्रेंडली बनाना है, कैसे कंपैशनेट बनाना है, कैसे सर्विस ओरिएंटेड बनाना है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। देखो इन्फंट सिद्ध प्रोग्राम जो हमने दोनों ने किया था उसमें हमको यही सिखाया गया था कि पहले आप कागज में लिखो कि आपका बच्चा आपको कैसा होना चाहिए, मतलब आपका आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि मेरा बालक कंपैशनेट होना चाहिए, करुणा वाला दयालु होना चाहिए, मेरा बालक मददगार होना चाहिए, मेरा बालक मिलनसार होना चाहिए, मेरा बालक बुद्धिमान होना चाहिए, मेरा बालक पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरा बालक साहसी होना चाहिए, मेरा बालक स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली डिसीजन लेने में आगे होना चाहिए, मेरा बालक देशभक्त होना चाहिए, मेरा बालक बिना बिना डर के सब सामना करना चाहिए, ये आपको लिखना है पहले। और मेरा बालक स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, मेरा बालक संगीतज्ञ होना चाहिए, मेरा बालक गायक होना चाहिए, जो भी आपके मन में जो भी तमन्नाएं हैं वो आपको पहले कागज में लिखना है और उसके अनुसार बालक के मन में वो बीज डालना है आपको। जैसे मैंने कहा था ना, लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल की जो वाइफ थी उसको बालक को भी वही बनाना था, तो गर्भ से लेकर 21 साल तक उसने उसको प्रचार किया, पूरा अच्छी तरह से कल्टिवेट किया उसको और यशस्वी भी हुई वो, क्योंकि उसका ध्येय था, उसका प्लानिंग था पूरा, एवरीथिंग वाज ऑन पेपर व्हाट शी वांटेड टू डू। तो उस प्रकार से हमें भी हमारे इकलौते बालक के लिए कागज में लिखकर पति पत्नी को बैठना चाहिए, समय निकालिए उसके लिए, छुट्टी निकालिए, कोई अच्छा मुहूर्त देखिए, बैठिए और दोनों को प्लानिंग बनाना चाहिए कि मुझे ऐसे ऐसे अपने बालक को बनाना है और ऐसे नहीं बनाना है, मुझे वो झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं होना चाहिए, करप्टेड नहीं होना चाहिए, तो वो अपने आप बालक का व्यक्तित्व नहीं बनता है। आप जो आज हो, मैं जो आज हूं ना, वो मेरे माता पिता ने किए हुए मेहनत का परिणाम है। उन्होंने इतना पॉलिश्ड और ऐसा सिस्टमैटिक प्रोफेशनल प्लानिंग नहीं किया होगा, लेकिन उनके पास भी कुछ दृष्टि थी, कुछ भी प्लानिंग था उनका कि ये भाई बेटे को ये पढ़ाई में तेज है, उसको हम पढ़ाई में डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे, लोन निकालेंगे, ये गहना गिरवी रखेंगे, जो भी कुछ उन्होंने प्लानिंग किया कुछ होगा, इसलिए आज हम जो भी कुछ है वो है, तो किसी ने उसकी योजना बनाई थी। उसी तरह से हमारे बालक आगे जाकर वो बनेंगे जो योजना आपने आज बनाई हुई है। और अगर आपको योजना बनाने में समय नहीं है तो मैं तो कहूंगा कि फिर माता पिता बनने की जरूरत क्या है, फिर ऐसे ही माता पिता बनने में क्या मतलब है। हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, जिनका जिनका मन बहुत डेवलप्ड है उनको ही मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, जिनका मन बहुत विकसित है, बुद्धि के आधार पर मन विकसित है, उनको ही मानव कहा गया है और उनके लिए मनुस्मृति लिखी गई है, हाउ टू लिव एज ह्यूमन बींग्स। एक प्रश्न ये हो गया। तो आपने कहा था कि शेयरिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बताइए। कम आउट फ्रॉम फॉरवर्ड
और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए। वो रिस्पेक्ट के लिए जब साथ में बच्चे वगैरह, जब जॉइंट फैमिलीज रहती है और बड़े भाई छोटे मतलब छोटे सिबलिंग्स वगैरह होते हैं ना, तो उस समय वो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, लेकिन जब अकेला बच्चा होता है तो उसको हर चीज सिखानी पड़ती है, तो वो सिखाना फिर माँ बाप के लिए थोड़ा स्ट्रेनियस होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स होता है, लेकिन फिर भी वो और बच्चों के साथ में अपने अगल बगल में कोई बच्चे है या तो अपने उनके कजिन्स कुछ होंगे तो उनको घर पे बुलाया जाए, और मतलब वो एक रिलेशन कैसा होता है उसका अनुभव उनको देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो सीखेंगे नहीं, तो अकेले अकेले और कुछ फ्रेंड्स उनके आगे लाइफ में आ जाएंगे और बस उनकी उनका जीवन वहीं तक सीमित हो जाएगा, उनको रिलेशंस क्या होती है वो पता ही नहीं चलेगा। तो ये करना भी बहुत जरूरी है उसके साथ में।
ये एक पॉइंट मुझे और बताना था कि सिंगल चाइल्ड का और आगे जाके परिणाम क्या होगा। अभी मेरे जीवन में कई सारी चाचियां हैं, ताई जी हैं, ताऊ जी बहुत सारे हैं, इतने सारे रिलेशनशिप मेरे पास है, बुआ जी हैं, मौसी जी हैं, मौसा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप सोचिए जब बेटा आपका अकेला रहेगा या बेटी अकेली रहेगी, उस बेटी की बेटी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ना मौसी होगी, ना मामा होगा, ना चाचा होगा, ना चाची होगी। सो आगे जाकर भविष्य में ये सारे रिश्ते खाली बुक में मिलेंगे आपको, महाभारत में मिलेंगे, रामायण में मिलेंगे, और असली जिंदगी में कभी आपको नहीं मिलेंगे ये रिश्ते। तो उससे क्या होता है, रिश्तों से मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है, क्योंकि कई प्रकार के रिश्तों से जब हम डील करते हैं तो एक मैच्योरिटी आती है। जब परिवार बहुत बड़ा होता है और हमारी लड़की बड़े परिवार में जा रही है तो वो अच्छी बहू बनेगी, क्योंकि उसको बहुत सारी मैच्योरिटी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो तीन नंदियां हैं और एक रियल सासू है, कि सासू के दो बहनें हैं और दो चचेरे फादर इन लॉ भी हैं, रियल फादर इन लॉ भी है, दो देवर भी हैं, दो जेठ भी हैं। तो काफ़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मौका मिलता है कि किससे कैसे डील किया जाए एंड हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दैट। इसका ऑन फील्ड ट्रेनिंग होती है अपने आप ही। लेकिन हमारे बालक जब एक ही होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को हम एकदम लिमिटेड बना रहे हैं, इट्स अ लिमिटेड एडिशन, देयर इज नो स्कोप अवेलेबल टू लर्न मोर। तो ये एक बात है। यस,
और मैंने देखा है बहुत बच्चे ऐसे हमारे नजर में हैं कि जो अकेले हैं और अकेले बड़े हो रहे हैं, तो उनको ना दे आर ऑलवेज हैंकरिंग फॉर सिबलिंग्स, ऑलवेज हैंकरिंग, मतलब हमेशा मम्मी पापा को यही कहते रहते हैं। और फिर कभी कभी उनको पूछा जाए ना तो छोटे बच्चे भी बोलते हैं, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे तीन बच्चे चाहिए, मुझे चार बच्चे चाहिए, मतलब दे आर ऑलवेज हैंकरिंग फॉर दैट कंपनी। तो मतलब दे आर हैंकरिंग, बट होता क्या है उस चक्कर में दे बिकम वेरी सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, मतलब उनको कुछ दूसरा है ही नहीं शेयर करने के लिए और अपना सुख दुख बांटने के लिए। तो दे आर लाइक विद इन देमसेल्व्स ओनली, दे डोंट गो आउट, दे डोंट शेयर थिंग्स विद अदर्स, बहुत मतलब अपने अपने में ही रहते हैं, बस मैं मेरा, यही उनका थोड़ा मेंटेलिटी हो जाता है। और जो पैम्परिंग उनको मिलती है मम्मी पापा से, तो उसकी वजह से वो मतलब हर चीज मुझे ही मिलनी चाहिए, वो दूसरों को कुछ मिले वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो वो भी एक है, तो उसको भी हमको टैकल करना चाहिए बाय अगेन एज आई सेड कि उनको शेयरिंग सिखाना पड़ेगा, उनको रिलेशंस क्या होती है वो सिखानी पड़ेगी, तो वो करने से थोड़ा सा मतलब वो सीख जाएंगे।
और मेरे ऑब्जर्वेशन में, मैं भी इसे, ये आपको लगेगा कि मैं नेगेटिव बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप डिस्करेज हो जाओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इन चीजों से बचना है। अगर आपने सोचा भी नहीं होगा इसके बारे में तो आपको ये विचार अगर मन में आता है तो आप उसको प्रिवेंट करने का प्रयास करेंगे। मैंने कुछ इकलौते बेटों को, बेटियों को देखा है जो जो क्या कहते हैं, कर्तृत्ववान नहीं रहते, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे पापा की सारी जायदाद, मम्मी की सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस, घर, बंगला, गाड़ी, गाँव का घर, ये सब मेरा ही होने वाला है, तो वाई शुड आई वर्क हार्ड। इतना मुझे बोल रहे हैं स्कूल जाके फर्स्ट आना है, तुमको ये करना है, स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाना है, व्हाई आई नीड टू डू दैट पापा, व्हाई आई हैव टू वर्क हार्ड सो मच। मेरे नानी का भी प्रॉपर्टी आपके नाम से मेरे नाम पे आने वाला है, मेरे दादी का प्रॉपर्टी भी आपके नाम से मेरे नाम पे आने वाला है, और आपका भी ये सब कुछ मेरा ही है, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूँ, IIT MTech PhD क्यों करने की जरूरत है मुझे। तो खुद कुछ बनने का, कर्तृत्ववान होने का जो होता ना एक जिजीविषा होती है, एक ध्येय होता है कि मुझे कुछ करना है। जैसे मेरे पिताजी जन्म बचपन में, उनके 9 साल की उम्र में ही उनके पिताजी गुजर गए, तो उनके अंदर एक हिम्मत साहस था कि मुझे अपने पैर पर खड़े होकर अपने बलबूते पे कुछ करना है। तो पूरी जिंदगी उन्होंने जीरो से बनाई है, और हमारे पापा के पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा देखो बेटा मैं आपको पढ़ा लिखा रहा हूं, लेकिन पढ़ा लिखना होने के बाद में कमाना आपका काम है। तो ऐसे नहीं कि भाई सब कुछ रेडीमेड करके हमको हाथ में दे दिया, प्रॉपर्टी दिया, जगह दिया, क्लिनिक खोल के दिया, सब कुछ दिया, लाइक अ लॉलीपॉप यू नो रेडीमेड करके दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको अच्छा शरीर दिया हूँ, तो वर्जिश करके ट्रेनिंग करके अच्छा शरीर दिया हूँ, और आपको एजुकेट किया, मैंने डॉक्टर बना दिया है, अभी आगे आपको अपना जिंदगी बनाना है। तो फिर हमने अपना अपना जिंदगी बनाई है, इसका मतलब कुछ उन्होंने दिया, कुछ हमारे लिए छोड़ दिया कि आपको अपने बलबूते पे करना है। लेकिन इकलौते बालक में क्या होता है, एवरीथिंग इज गिवन स्पून फेड फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि आप उसके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज करना चाहते हो, उसमें कुछ असर नहीं छोड़ना चाहते हो। उसमें क्या होता है, वो करते करते हम बालक का नुकसान भी करते हैं, उसके व्यक्तित्व का भी नुकसान करते हैं। वी डोंट इवन रियलाइज दैट इन द नेम ऑफ लव वी मेक हिम पैम्पर्ड, इन द नेम ऑफ लव वी टेक आउट यू नो करियर फ्रॉम हिम और हिज ओन साहस फ्रॉम हिम, उसका ढाड़स छाहस जो है संकटों का झेलने का, वो हम निकाल रहे हैं उसमें से। तो ये हमको देखना है, अगर हमारे पास अगर समझो एक ही बालक होने वाला है, तो यू हैव टू सी दैट यू हैव टू एनकरेज हिम टू परफॉर्म इन लाइफ। उनको एक लक्ष्य देना है आपको कि आपको ये करना ही है। हाँ, यू कैन नॉट जस्ट से कि नहीं कर सकते आप ऐसा, हम आपको देंगे रेडी, आप आराम करो अच्छी तरह से, कोई कष्ट बेटा ज्यादा मेहनत मत करो, इतनी क्यों मेहनत कर रहे हो, आई फील वेरी बैड टू सी यू स्वेटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह पे एसी चाहिए ही चाहिए, हर जगह पे एयर कंडीशन कार चाहिए, हर जगह पे फ्लाइट चाहिए, तो वो ना तकलीफों को झेलने की क्षमता जो है ना वो नष्ट हो जाती है। हमको अपने बालक को संकट झेलने की शक्ति, अपयश यानी फेल्यूअर झेलने की शक्ति बचपन से ही देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम हैं तो पैम्पर करते रहेंगे, सब कुछ देते रहेंगे, हम जाने के बाद में बालक को जिंदगी का सामना खुद करना है। और अगर वो फेल्यूअर नहीं सामना कर सकता है और संकटों को सामना करने से डिप्रेस हो जाता है, तो अक्सर लोनर चिल्ड्रन आर इन साइकेट्री ओपीडी फॉर डिप्रेशन फॉर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसको एग्जाम फेस करना मुश्किल है उसके लिए। तो ये सब जो हमको लिखना है कि मेरे पास कितनी भी जायदाद होगी, मेरा बच्चा 7 पीढ़ी तक रह सकता है अच्छी तरह, इतनी मेरे पास कमाई करके रखी है मैंने, फिर भी बालक के डिग्निटी के लिए, बालक के पर्सनालिटी के लिए, बालक के व्यक्तित्व के लिए हमें वो उनको चैलेंज देना चाहिए, क्योंकि तो फाइनली कैसा है, लाइफ का बैटल हर एक को खुद लड़ना होता है। मम्मी पापा ना आपके एग्जाम सेंटर के एकदम दरवाजे तक आएंगे, वहां पर भी एक पप्पी देंगे आपको, बोलेंगे बेटा ऑल द बेस्ट, मैं बाहर बैठ के प्रे कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अंदर जाके एग्जाम का पेपर बालक को ही लिखना होता है। आप कितनी प्रे करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे और वो भगवान को जल में डाल के रखेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है, लेकिन एग्जाम बालक को देना है। और वो एग्जाम देने के लिए बालक को आपको सशक्त बनाना है, समर्थ बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। वेदर यू हैव वन चाइल्ड, टू चाइल्ड और 3 चिल्ड्रन, सबके लिए वो पर्सनालिटी डेवलप करना हमारे हाथ में है। ओके, तो इसके ऊपर कोई किसी को प्रश्न है लोनली चाइल्ड के ऊपर, बिफोर वी गो टू अनदर सब्जेक्ट मैटर?
जैसे कि हम लोग ना फ्लाइट चलाना जब सीखते हैं, तो जब तक सीख रहे हैं तब तक तो हमारे साथ कोई रहेगा लेकिन एक बार सीखने के बाद फिर तो फ्लाइट अपने आप को ही चलाना है, तो वो ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली द चाइल्ड और व्होएवर द पर्सन इज हैज टू फ्लाई हिज ओन फ्लाइट, नोबडी कैन गो विथ हिम, देन ही हैज टू गो अहेड। तो वो हर चीज का सामना करना उसके लिए, वो मतलब इसमें मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए।
तो इस पर कोई प्रश्न? हाँ, बस बंद हो गया माइक। यस, और कोई प्रश्न है इस विषय पर, लोनली चाइल्ड के ऊपर? ओके, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रेज किड्स हु हैव स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट माइंड। हर माँ को, हर पिताजी को अपना बालक एकदम स्ट्रांग माइंड वाला होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग वाला होना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कमजोर माइंड वाले माता पिता का बच्चा स्ट्रांग नहीं बन सकता है क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो है उसकी माइंड की, वो आपसे आने वाली है उसकी। जब वो आपको देखता है कि आप निडर होकर साहस के साथ आप लड़ते हो और डिसीजन लेते हो और रिस्क भी लेते हो लाइफ में, तो उससे उसको प्रेरणा मिलती है। इसलिए पहले आप लोग कल्टीवेट कीजिए वो साहस को और स्ट्रेंथ को, और आपके उदाहरण को देखते हुए, क्योंकि बच्चे भी आपके साथ जीवन जी रहे हैं, आप भी जीवन जी रहे हैं, बच्चे भी आपके साथ बड़े हो रहे हैं, तो वो सारे बचपन के अनुभव लेते हैं बच्चे, बच्चे देखते हैं और इम्बाइब करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि 70% ऑफ कल्चर इज बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय वर्ड्स, नॉट बाय लेक्चर्स। तो माता पिता अगर बहुत साहसी धाड़सी होंगे तो बालक भी धाड़सी बनेगा, नंबर वन। और नंबर टू, आप अपने बच्चों को ना कुछ चैलेंजिंग काम दीजिए, हर बार उनको कहते ना हमारे लोकल लैंग्वेज में, उनको लल्लू बना के मत रखिए, नहीं 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 मेरा बालक कैसे जाएगा, अरे वो बारिश आ रही है उसको बाहर मत भेजना, भीग जाएगा तो खांसी आएगी, बुखार आएगा, अरे अकेले कैसे जाएगा वो, उसको गाड़ी से भेजो, वो रिक्शा में कैसे जाएगा, वो बस में कैसे जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं। बड़े से बड़े अमीर लोगों को मैंने देखा है, बच्चों को ट्रेन से भेजते हैं, जाओ लाइन में खड़े रहो, टिकट निकालो अपने आप और जाके भीड़ में, भीड़ वाले ट्रेन में बैठो और घर पे आ जाओ रिक्शा करके, दे ट्रेन देम, क्योंकि पिताजी करोड़पति हैं, लेकिन बच्चों को फिर बुरी आदतें लगाना चाहिए, दे शुड नॉट गेट स्पॉइल्ड, तब जाके बालक जो है ना वो साहसी बनता है, स्ट्रांग माइंड कब बनता है, यू पुट हिम इन अ सिचुएशन, डोंट टेक बिग रिस्क कि भाई वो अपने आप को नुकसान करके घर पे लौटेगा, आप जानते हो कि कितना रिस्क ले सकता है वो, लेकिन उसको मौका दीजिए, उसको उसको उस पर ट्रस्ट कीजिए, आप बेटा आई ट्रस्ट यू, यू आर अ स्ट्रांग मैन, गो अहेड एंड डू इट, तो बालक फिर हिम्मत करेगा कि माँ ने मुझ पर इतना विश्वास जताया है, पिताजी ने मुझ पर इतना विश्वास जताया है, तो मैं ये करके दिखाऊंगा, यशस्वी होके दिखाऊंगा, तो आके बताएगा आपको कि ऐसा ऐसा हुआ, इधर मैं गड़बड़ भी कर दिया, लेकिन आखिर आप बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप उसको सराहना दोगे, एनकरेजमेंट दोगे और अप्रिशिएट करोगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या तो क्या बोलते हैं, तू ना तू ऐसा ही है, तू कभी जीवन में फर्स्ट नहीं आने वाला है, तू तो कितना भी तेरे ऊपर खर्चा करेंगे ना, कितना क्लास लगाएंगे, फिर भी तू ऐसा ही है, 50% वाला लड़का है। ऐसे बोलने से क्या होगा, उसकी क्षमता जो आज है ना 50%, उसको आप 45% करने वाले हो, 30% करने वाले हो। हर बालक 90% 95% के लिए कट नहीं होता है, उसकी अपनी अपनी टैलेंट होती है, उसकी एक लाइकिंग होती है जहां वो परफॉर्म करना चाहता है, और आप उसको उसके नापसंद की चीजों में डालकर उसको फर्स्ट लाना चाहते हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, स्टडी योर चाइल्ड, हाँ मैकेनिकली उसको बड़ा करने का प्रयास मत करना, और उसके एप्टीट्यूड के अनुसार उसको छोटे मोटे चैलेंज देना। ओके जाओ आज तुम 2 किलो आलू लेके आओ, 1 किलो मिर्ची लेके आना, और ये देख के लाना अच्छी तरह से, और जब लेके आएगा ना तो मिस्टेक करेगा, तब उसको समझाना बेटा ये आलू है ना ये कच्चा है, इसमें नीला दाग है ना, ये ठीक नहीं होता है, इसको अंकुर निकला ना ये खराब होता है, और ये मिर्ची ना आपने थोड़ी सी ज्यादा पकी हुई लाल रंग की लाई ना, इसको अगली बार ग्रीन लेके आना। अरे तुमको मैंने बताया था ना कि हरी लेके आना, तुम लाल मिर्ची क्यों लेके आया, कितना समझाया, तुम बिल्कुल दिमाग के उल्लू हो, एकदम डब्बू हो तुम, कितना समझाने पर भी तुमको नहीं आता है, तो उससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस आप ही काट रहे हो। आप चाहते हो वो कॉन्फिडेंस बने, लेकिन अपने ही हाथ से उसका कॉन्फिडेंस आप तोड़ रहे हो। तो इसलिए बच्चों को गलती करने का मौका देना, उनको गलती कैसे हुई समझाना और अगली बार कैसे नहीं करना है उसके लिए प्रोत्साहन देना, लेकिन डांट 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 लगाते रहना, उससे उसका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ता नहीं। पिताजी बहुत सख्त होंगे और शिस्त प्रिय होंगे, डिसिप्लिन वाले होंगे, तो बच्चे अधिकतर ना कमजोर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव नो चॉइस टू टेक द डिसीजंस, ऑलवेज डिसीजंस आर टेकन बाय समबडी एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो, दैट्स ऑल, यू हैव नो चॉइस टू डिबेट। लेकिन आपको ना एक बार बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया ना, हमने वो ISP कोर्स में सीखा था, तो कहते बच्चों से पूछो बेटा हम लोग कौन सा समय का लगाए, हमारे पास 4 चॉइस है, तो बच्चा कहेगा पापा ये मत लगाना, ये अच्छा है बढ़िया, और आप बोलेंगे ए चुप बैठना, आपको किसने पूछा है, आप चुपचाप रहो, बड़ों के बीच बात नहीं करते, तो फिर क्या होगा, उसका जो उभरता हुआ मन है, क्रिएटिव माइंड है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो वहां पर। इसलिए एक बार वो बच्चा 8-9 साल का हो गया ना, मतलब आपका बच्चा जल्दी बड़ा हो सकता है, कम लेट बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि अभी समझदार बन गया है, उसको ना इन्वॉल्व करो, सनमाइका का कौन सा रंग का ले लूँ, ये रूम में कौन सा कलर लगाऊं, ये टाइल ठीक है क्या, मैं आप साथ चलेंगे हम लोग टाइल चुनने के लिए, ये खिड़की में कौन से रंग का वो एल्यूमिनियम लगाएंगे, कौन सा एनोडाइज करेंगे, लेट देम कम इन टू योर डिसिजिव एक्टिविटीज। और मैंने देखा है कि जब बच्चे अपना देते ना ओपिनियन, कभी कभी हमारे से अच्छे ओपिनियन उनके होते हैं, और हमने इसका प्रयोग करके हर पे देखा हुआ है हमारे बेटे के साथ, और हमेशा अच्छे ही सजेशन मिले हमको उनकी तरफ से, ये हमारा एक अनुभव रहा है। और आज भी वो शादीशुदा होकर चली गई है, फिर भी हम उनको फोन करके पूछते हैं आपको क्या लगता है ये बेडरूम में हम ऐसा कर रहे हैं कैसा करना चाहिए, फिर वो आइडिया हमको फोन पे देती है और हम उसको इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। उससे क्या होता है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि देखो मैंने जो कहा ना पापा ने अडॉप्ट किया उसको, पापा ने एक्सेप्ट करके उसको घर में इंप्लीमेंट किया है, तो शी फील्स प्राउड कि आई कैन डू समथिंग, हर क्रिएटिविटी ग्रोज। बोलो।
बेसिकली वैल्यू देयर ओपिनियंस, मतलब रिस्पेक्ट देम, सो दे विल ऑल्सो लर्न टू रिस्पेक्ट यू एंड ऑल्सो अदर्स।
ये जो बात इन्होंने कही ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए अगर आपको बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है तो। अगर हर एक उनके ओपिनियन को आप काटते रहेंगे तो बच्चा है तो बात बीच में बात कर, तो फिर उसकी सारी कॉन्फिडेंस जो है ना वो खत्म हो जाती है। आप उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट कीजिए। फिर अभी एक ना टीन एजर का बहुत बड़ा विषय है, उसको अभी लेना है क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, इट्स अ बिग टॉपिक। अच्छा, किसी ने पूछा था कि ये जो एज ग्रुप होते हैं इनमें क्या अलग अलग होती का परवरिश, पेरेंटिंग अलग अलग होता है? आंसर इज यस, आंसर इज परफेक्टली यस, बिग बिग यस। 0 to 5 years अलग परवरिश होती है, 5 to 10 years अलग परवरिश होती है, 10 to 15 years अलग परवरिश होती है, और बाद में अलग परवरिश होती है। इसमें सबसे अधिक डिफिकल्ट जो चीज होती है वो टीनेजर्स का पेरेंटिंग होता है। और मैंने आपको बार बार कहा है समय देना बचपन में बहुत आवश्यक होता है। अगर जब बालकों को माता पिताओं बालकों को माता पिता की आवश्यकता है, वो चाहते हैं उनका संग चाहते हैं, उनका एसोसिएशन भी चाहते हैं कि आई वॉन्ट माई मम्मी टू बी विथ मी, पापा टू बी विथ मी, और तब आप शायद उनके ही हित के लिए, उनके ही भविष्य के लिए, अगर उनसे दूर रहते हैं, बिजी रहते हैं, आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक मनी फॉर देम सो माई सन कैन गो अब्रॉड, समझो आपका ऐसा विषय रहेगा, और बालक चाहता है कि वो आपको मिले, ही कैन मीट द पेरेंट्स, और आप उनके हित के लिए बाहर रहते हो, तो एक समय ऐसे आता है कि आपको लगता है कि यू शुड, यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड, लेकिन वो कहते हैं कि मम्मा आई डोंट वॉन्ट यू, ओपनली बोल देते हैं मम्मा आई डोंट नीड यू, लीव मी अलोन। ये अभी अभी भी हम देख रहे हैं और पहले भी देखा है, आगे भी देखते रहेंगे निश्चित रूप से। कारण क्या है, जब बालक को आपकी जरूरत थी तब आपने सोच समझ कर प्लान करते हुए उनके हित के लिए हार्ड वर्क करते ही साथ साथ ही उनके लिए समय का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो जब आप चाहते हो समय देना वो समय स्वीकार नहीं करेंगे आपका। क्लियरली से मम्मा आई डोंट वॉन्ट टू स्लीप विथ यू, आई वॉन्ट टू स्लीप इन सेपरेट रूम, मम्मा आई डोंट वॉन्ट टू ईट विथ यू, मैं अपना अपना खाना मेरे टाइम पे खाऊंगी, मतलब दे वॉन्ट टू टेल यू वाई 51 things की प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी एंड प्लीज गिव मी माई स्पेस, है ना। ये टीनेजर का एक स्पेसिफिक नेचर होता है, तो उस समय पर आप उनका प्योर फ्रेंड बन के रहिए। आप किधर भी अंदर के कोने में ये मत रखना कि मैं माँ हूं, मैं पिताजी हूं, ये अंदर से भी आप डिलीट कर देना, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो वो बच्चा आपसे और दूर और दूर और दूर जाएगा। और जिस बच्चे को बचपन में आपने समय नहीं दिया है वो बचपन से ही सोचने लगता है कि मुझे प्यार बाहर ढूंढना है, और ऐसे बच्चे लव अफेयर में बहुत जल्दी गिरते हैं, क्योंकि जब उनको प्यार की बहुत आवश्यकता होती है तब वो माँ बाप से उनको अपेक्षा होती है, तब उनको नहीं मिलता है, समझो किसी कारण, किसी किसी अनिवार्य स्थितियों के अनुसार, तो वो जो प्यार की जरूरत है वो बालक बाहर ढूंढेगा ही ढूंढेगा। जैसे घर में अगर कोई पत्नी पिता पति को अच्छा खाना नहीं खिला रही है तो वो होटल में जाके खाएगा ही खाएगा, डेफिनेटली खाएगा, उसकी जो भूख है, उसकी जबान की जो इच्छा है वो बाहर जाके पूरी करेगा। इसलिए अपने बालकों को अगर जवान होने के बाद में लव अफेयर से आपको बचाना है तो उनको 5 से 10 साल की उम्र में बहुत टाइम दीजिए। आप 50 बातें कीजिए जो आपके लिए रिलेवेंट होगी। आप हो सकता है प्रोफेशनल औरत हो या प्रोफेशनल प्रभु हो, मतलब पुरुष हो, आपको लगेगा नॉनसेंस बातें मैं कर रहा हूं बच्चों के साथ, लेकिन करिए, आप कीजिए, स्पेंड टाइम विद देम इन यूजलेस थिंग्स सो कॉल्ड, लेकिन उससे आप एक बॉन्ड बना रहे हो, उससे उनकी प्रेम की और मित्रता की जरूरत पूरी कर रहे हो, फिर वो आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आप पर डिपेंडेंट भी रहेंगे। आपको उनको ऐसे पैरासाइट नहीं बनाना है अपने ऊपर, लेकिन आपका एक लव डिपेंडेंस रहेगा। जहां तक प्रेम की बात आती है, मैं मेरे माता पिता पर डिपेंड हूं, मेरी बड़ी बहन बड़े भाई पर डिपेंड हूं, प्रेम के लिए बाहर नहीं देख रहा हूं मैं, बाकी मैं बाहर में रॉकेट देखूंगा, हेलीकॉप्टर देखूंगा, वो सब ठीक है। तो इसलिए जब टाइम देना होता है तब टाइम दीजिए, और जब टाइम देने का समाप्त होता है तो मित्रता कीजिए और उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट कीजिए। और अभी आजकल जमाने में क्या है, हम तो हमारे जमाने में तो गर्लफ्रेंड होना ये बहुत भयंकर गुनाह था, और गर्लफ्रेंड है ऐसा पता चला तो 15, 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे को भी बहुत पीटते थे माता पिता, ये एक जमाना था। आजकल तो किसी लड़की को लेके आए तो हम पूछते हैं कि बेटा आर यू लव इन लव विथ हर, वी आर ओके विद दैट, ऐसा हमको बोलना पड़ता है। दिस इज टुडे सिचुएशन। तो उसको आपको ना बहुत ही समय के अनुसार मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। हर बात में एक जनरल गाइडेंस नहीं दे सकते कि हर बच्चे को लागू हो जाएगा, वो हर हर घर में जो 15 से 20 लड़के हैं जो मैं अभी कह रहा हूँ वो सबको लागू हो जाएगा, ये समझना गलत फहमी है, क्योंकि एवरीबडी इज अ इंडिविजुअल केस, है ना, एवरीबडी इज अ इंडिविजुअल केस। उसको आपको अपनी अपनी बेसिक गाइडलाइन ये है कि आप मित्रता बनाए रखिए विद टीनेजर्स और उनके ओपिनियन को बहुत अच्छा वैल्यू दीजिए, उनको घर के डिसीजन में इन्वॉल्व कीजिए, आप उनको पूछिए कि आपका ओपिनियन क्या है, बेटा आज क्या बनाए, आज संडा संडे का दिन है, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा है, आपका मन में कोई मेन्यू है क्या, उनको पूछिए और उसको बनाइए। अच्छा छोटे भाई का बर्थडे बनाना है बेटा क्या करना चाहिए, तो आपको आइडिया देगी ऐसे करना है वैसे करना है, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया दे सकते हैं आपको। तो इसी से आपका फैमिली बॉन्डिंग बनता है। अगर माता पिता बहुत डोमिनेटिंग होंगे ना तो बच्चा कभी भी साहसी धाड़सी और स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्योंकि माता पिता का स्ट्रेंथ ही उसको कमजोर बना देगा। इसलिए आई मे बी स्ट्रांग फादर बट आई कैन नॉट ऑलवेज डोमिनेट माई चाइल्ड इन माई डिसीजन मेकिंग एंड टू बैठना, बात मत करना बीच में, बड़ों के बीच में बात नहीं करते, ये सब बातें ना अभी आज आउट क्या कहते हैं ऑब्सोलीट हो गई है। दिस सेंटेंसेस एंड लैंग्वेज इज गॉन द अदर डेज वेयर सच काइंड ऑफ टॉक्स वर बींग डन विद पेरेंट्स, अभी वो नहीं हो सकता है। और अभी पुराने जमाने में ना माता पिता कंट्रोल में रहा करते थे बच्चों के ऊपर, मतलब मेरे पिताजी जो है ना वो सुबह 5 बजे दुकान में जाते थे और रात को 1 बजे लौट के आते थे, और हम केवल उनको ब्रेकफास्ट में और लंच में और डिनर में देखते थे, वो आके जाते थे वापस दुकान में। लेकिन मेरी माँ के लिए केवल बोलती थी पापा को बताऊं क्या, बस इतना कहती थी, हम चुप हो जाते थे। एक लाइन से मेरी मम्मी ने 7 बच्चों को कंट्रोल किया है, पापा को बोलूं क्या, बस, क्योंकि वो एक जमाना था उस टाइप का। लेकिन अभी नहीं हो सकता ऐसे, अभी बच्चा बोलेगा जाओ बोलो पापा को जो बोलना है बोलो, आई डोंट केयर, तो आप क्या बोलोगे उसके आगे, नथिंग यू कैन से, योर ट्रम्प कार्ड इज फेल्ड, सो व्हाट यू कैन डू। जमाना बदल गया है और हमको भी बदलना होगा, और हमारे जमाने की बातें, हमारे जमाने की बातें आजकल के बच्चों को बताते रहना नहीं आपको कि हम कैसे थे, हम कैसे ओबीडियंट थे, डरते थे, ये थे वो थे, बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको। आप अपने आज के स्थिति से आइडेंटिफाई कीजिए और आज के स्थिति में क्या कर सकते हैं वो देखिए। और बेसिकली क्या है ना, बच्चे आजकल माता पिता को छोड़कर रहना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो, पहले कैसे इंडिपेंडेंट माइंड के हुआ करते थे, अभी वो इंडिपेंडेंट रहना भी चाहते हैं, नो दखल, मुझे कोई दखल नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में आपसे, मैं अपना अपना पॉकेट मनी अर्न करूंगा, अपना जॉब करूंगा, आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन यू। किसी ने प्रश्न पूछा है कि टीनेजर लोग आजकल पॉकेट मनी के लिए कुछ छोटा मोटा जॉब करना चाहते हैं और वो इंडिपेंडेंट खर्च करना चाहते हैं, उनको मोबाइल लेना है, उनको कुछ टैबलेट लेना है, उनको कुछ लेना है, क्या करना चाहिए उसके लिए। अमेरिका में कल्चर है पढ़ाई करते करते शाम को वो बर्गर बेचते हैं कि आउटलेट में और कुछ डॉलर कमा लेते हैं $10-15 पर डे और अपना अपना मर्जी पूरी करते हैं उससे। तो जहां तक हो सके ना, जहां तक हो सके, मैं तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, जहां तक हो सके बच्चों को पढ़ाई करते समय अर्निंग का लालच मत दिखाइए। अगर छोटे बड़े खर्चे हैं दे दीजिए उनको, क्योंकि एक बार जवान लड़का या लड़की पॉकेट मनी भी अर्निंग करने लगेगा ना तो उसके फिर चाहते बढ़ जाती हैं। अभी उसको $10 का काम मिल रहा है तो उसको आगे लगेगा कि $25 का काम मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी ये भी लेना है वो भी लेना है, अभी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल भी चाहिए मुझे, तो ये सब कैसे होगा, 1.25 लाख की मोटरसाइकिल मुझे चाहिए और पापा तो देने वाले नहीं है, मैं तो खुद अर्न करूंगा। तो उससे उनका पढ़ाई का माइंड हट जाएगा और पैसे में अटैच हो जाएगा, तो जो करियर वो कर सकता था या कर सकती थी उससे वो हट जाएगा पूरा माइंड। पढ़ाई करने का एक माइंडसेट होता है और अर्निंग का एक माइंडसेट होता है, और दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये इतना आसान नहीं है कि भाई पढ़ाई भी कर रहा है और अर्निंग भी कर रहा है, दोनों बढ़िया से कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। ही विल डैमेज वन वन पार्ट टू डू अनदर पार्ट। हाँ, पैसे कमाने के लिए वो पढ़ाई का नुकसान करेगा या पढ़ाई करके फिर पैसे का नुकसान करेगा। इसलिए जितना हो सके उतना, मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि पढ़ाई करते समय पढ़ाई करना अच्छा है, और छोटी मोटी जरूरतें हैं थोड़ा कंट्रोल कीजिए, लेकिन दे दीजिए उनको आप, ताकि वो फ्रस्ट्रेट ना हो जाए कि भाई पापा मुझे मोबाइल देते ही नहीं है, कब से बोल रहा हूं मैं। यू जस्ट गिव इन टू देम लिटिल बिट इन कंट्रोल, बट डोंट पैम्पर देम कि भाई जो बोले वो दे, ताकि वो अर्निंग करने के जिसमें चले जाए। पापा जब मैं कमाऊंगा ना फिर आपसे नहीं पूछूंगा, फिर कोई जरूरत नहीं आपसे पूछने के लिए। ये स्थिति में मत लाइए उनको, डोंट ब्रिंग देम टू दैट लेवल, गिव देम वॉट एवर दे नीड, रिस्पेक्ट देम एंड लेट देम स्टडी। और अगर आप भी समझो धन से इतने सक्षम नहीं है, आपकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, और बालकों को भी क्या कहे मानते भी नहीं है, तो उनको देखरेख में कुछ करना कर सकते हो, पार्ट टाइम या छुट्टियों में कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक गाइडलाइन रखना कि पढ़ाई का नुकसान करके आपको कुछ नहीं करना है, आपके अंक में कोई परिणाम नहीं होना चाहिए, आपके पढ़ाई के ध्यान में आपको कम समय देकर कुछ काम नहीं करना है। आपको पढ़ाई इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपका प्राइमरी ड्यूटी है। जब तक हम हैं आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ लो बेटा जो पढ़ना है पढ़ लो, आगे जाके कमाना ही है जिंदगी भर, तो वही करना है। ये बच्चों को बताते रहना चाहिए। दिस इज माई फ्रैंक आंसर टू यू कि डोंट एनकरेज देम टू गो आउट एंड अर्न मनी। हाँ, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा उसका। और हाँ, अभी अगर प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रश्न हैं।
दो तीन लोगों ने अपना हैंड रेज किया।
हाँ, उनको पूछने दो।
प्रवीण आदित्य जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछिए। प्रवेश कुमारी जी, अनम्यूट करिए और पूछिए अपने प्रश्न को।
नो मैम, थैंक यू। ये बच्चे मैंने पूछना चाह
रही, थैंक यू मैम। ओके, करमवीर कुमार, आपने हैंड रेज किया था। परमवीर कुमार, राहुल चौरसिया, आपके कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम आगे की प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं।
यू आस्क एनी क्वेश्चंस आर देयर?
ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेनी टाइम्स वी सी पेरेंट्स पेरेंट्स लिव देयर ड्रीम्स थ्रू देयर चिल्ड्रन and hence unknowingly pressurize the kids towards certain career paths. How should such parents learn to let go? ये एक बहुत important question है। मैं डॉक्टर बनकर MD नहीं कर पाया, स्थिति के अनुसार स्थितियां ऐसी थी, तो मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बना के जरूर MD बनाऊंगा। हाँ, और बच्चे को मेडिसिन में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कुछ और ही करना है, उसको साइकोलॉजी में काम करना है या तो उसको इंजीनियर बनना है। अभी मैं आपको मेरा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, मैं ना 10वीं कक्षा में स्टेट रैंक होल्डर था, फिर मैं IIT में एडमिशन मुझे मिल रही थी और मैं मेडिसिन चला गया, और मुझे बाद में शादी होकर मेरी बेटी हुई। तो जब भी वो 10th में गई ना, तो सब लोग उसको पूछ रहे हैं कि आप भी रैंकर होगी ना, आप भी स्टेट में रैंकर बनेगी ना, आपके पापा भी रैंकर थे, और आप भी डॉक्टर बनेंगे ना, आपके पापा भी डॉक्टर हैं, उनका बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें आपको डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा। तो मुझे ये सब पता चला कि मेरे बेटी पर बाहर सोशली प्रेशर आ रहा है कि आप डॉक्टर की बेटी हो और अब 10th रैंक होल्डर की बेटी हो। तो मैंने बेटी से एक बार बताया, देखो बेटा, आपको रैंक होल्डर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास वो एम था, लक्ष्य था, मैंने उसको जिद से पूरा किया, लेकिन अगर आपको वो एप्टीट्यूड नहीं है तो आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे पास हो जाओ, लेकिन मेरे तरफ से आपको रैंक होल्डर बनने का प्रेशर नहीं है। सेकेंड चीज मैंने बताया कि आपको साइंस ही लेना है, ये भी मेरा प्रेशर नहीं है, और डॉक्टर ही बनना है ये तो बिल्कुल ही प्रेशर नहीं है, क्योंकि तो डॉक्टर बनना आजकल इतना आसान नहीं है, और डॉक्टर के बनने के बाद में भी इतना आसान लाइफ नहीं है, जनता आजकल आके मार देती है डॉक्टरों को। मैंने कई बातें बताई उनको, अच्छी भी चीजें हैं बुरी भी चीजें हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको डॉक्टर ही बनना है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मैंने पहले से ही बोल दिया था उसको। तो उसने SSC में बहुत अच्छे अंक लाए, तो जब एडमिशन लेने गई थी ना, तो जब वो एडमिशन लेने गई थी तो वो जो विंडो में क्लर्क था ना, क्लर्क, वो भी उसको पूछ रहा, बेटा आपको इतने अच्छे मार्क्स है, आप साइंस क्यों नहीं ले रहे हो, आप आर्ट्स में क्यों जा रही हो? तो उसने कहा कि मेरे अपने अपने गोल्स हैं, मुझे देखो बेटा आपको मैं एक दिन और टाइम देता हूँ, आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप अभी भी सोचो, आपके लिए मैं साइंस की सीट रिजर्व रखता हूँ, आप कल परसों आना विचार करके। तो वो विंडो वाला क्लर्क भी उसको बोल रहा था कि बार बार, अरे बेटा तुम साइंस ले लो, साइंस ले लो, घर पे आ गई, बोले पापा वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा बेटा कोई चिंता मत करना, आपको क्या लेना है वही लेना, आप मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। फिर उसने आर्ट्स ही जाके लिया, बीए किया, फिर भी उसका माइंड क्लियर नहीं था कि बीए में किस में करूं। मैंने कहा जो इंग्लिश अच्छा लगे इंग्लिश में करो, जो आपको विषय अच्छा लगे उसमें करो, तो उसमें इंग्लिश में बीए किया। हाँ, फिर संस्कृत विषय लिया और उसने एमए संस्कृत किया। उसके बाद में वो अभी टीचर भी है संस्कृत की, और बीच में उसने अपना संगीत जो है ना उसको बहुत उसमें रुचि थी, बचपन से हमने उसको एनकरेज किया था, तो संगीत विशारद बनी वो, और बाद में वायलिन पिकअप किया और अभी वायलिनिस्ट बनी है और वायलिन भी टीच कर दिए। वो उसको केक बनाने का बहुत शौक था, तो अभी वो एक्सपर्ट बेकर बनी हुई है। अभी अगर मैं उसको कहता कि आपको डॉक्टर ही बनना है, देखो इतना बड़ा अस्पताल है, आपको यहाँ पर अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा, आपको एमबीए करना है, हॉस्पिटल एडमिन करना है, ऐसा कहता था, तो वो ना अच्छी डॉक्टर बनती ना हॉस्पिटल एडमिन बनती। लेकिन फ्रीडम देने की वजह से वो आज एक बहुत अच्छी गायिका है, अच्छी वायलिन प्लेयर है, अच्छी केक बेकर है और अच्छी संस्कृत टीचर है वो खुद। कितनी अलग अलग वेरिएटेड विविध प्रकार के पहलू उसके अंदर आज आ गए हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। लेकिन अगर मैं मेरे मेल ईगो में उसको अगर प्रेशर करता कि डॉक्टर ही बनना है, तो मैं इकलौती मेरी बेटी हो, ऐसा कहता, तो फिर वो नहीं अच्छा होता। तो पेरेंट्स को कभी भी अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादना नहीं चाहिए। आप और बच्चे जो है वो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, और आपका बच्चा अभी देखो आपका, आप सब लोग फौजी लोगों की पत्नियां हो और फौजी भी हों, हो सकता है आपके बच्चे को फौजी नहीं बनना होगा, उसको शायद पॉलिटिशियन बनने की इच्छा होगी, शायद उसको डॉक्टर बनने की इच्छा होगी या और कुछ बनने की इच्छा होगी, और आप कहेंगे नहीं हम लोग फौजी हैं और आपने पूरा लाइफ फौजी भी आपके परवरिश हुई है, आपको भी फौजी बनना है। वो उसे कहना चाहिए पापा मुझे आप जैसा फौजी बनना है, तो फिर आप उसको एनकरेज कीजिए। लेकिन उसको अगर वो कहता है कि मुझे ना बहुत सम्मान है फौजियों का लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप उनको उसके लिए एनकरेज करना चाहिए। लेकिन अक्सर ये माता पिता उनके ट्रेनिंग की कमी के वजह से अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पर लादते हैं और उससे उनका डिस्कॉर्ड हो जाता है परिवार में, और बच्चों को एक चिड़ सी बन जाती है। जैसे मेरे विषय में हुआ था, मुझे बहुत स्ट्रांग डिजायर थी आईआईटी इंजीनियर बनने की, और मैंने एंट्रेंस पास करके हमारे घर के पास में बॉम्बे आईआईटी में प्रवेश भी मैंने प्राप्त किया था, लेकिन पिताजी मुझे भेज नहीं पाए और मुझे मेडिकल में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे जाना पड़ा और मैं डॉक्टर बन भी गया, आज मैं रिटायर भी हो रहा हूँ, बात दूसरी है वो। लेकिन मुझे मन में एक चिड़ सी बन गई थी जब मैं कॉलेज में था कि मेरे इच्छा के खिलाफ मुझे केवल सिचुएशनल प्रेशर की वजह से मेडिकल में जाना पड़ा, और मैं कई बार फर्स्ट एमबीबीएस में क्लास छोड़ के घर पे आया हूँ कि मुझे नहीं करना है ये। एक पहले बहुत पहले की बात है, फर्स्ट टर्म की बात है, क्योंकि एक क्रोध था, एक ऐसा विद्रोह था मेरे मन में, व्हाई आई शुड बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई वांट टू बिकम इंजीनियर, व्हाई आई एम क्वालिफाइड टू गो टू आईआईटी। तो उससे क्या होता है, जब पेरेंट्स लोग अपनी महत्वाकांक्षा अपने बालकों पर लादते हैं ना, तो वो बालक जो है माता पिता से जुदा हो जाता है, मन से वो ही बिकम सेपरेटेड, एंड लॉन्ग टर्म के लिए एक परिवार के सदस्यों को मन से अलग विलग होने की जो स्थिति है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। फिर बुढ़ापे में आपके बालक जवानी के क्रोध की वजह से आपकी देखभाल नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर हर्ट बाई यू, दे फील आई वॉज मिसडायरेक्टेड बाई माई पेरेंट्स, दे वॉन्टेड टू लिव देयर एम्बिशंस थ्रू मी, एंड आई डिडंट वांट टू सकम टू दैट, आई वाज फोर्स्ड, आई वाज हेल्पलेस दैट टाइम. इस तरह से मनोधारणाएं बनती है और फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, बालक लोग मिडिल एज बन जाएंगे और वो हमारी देखभाल नहीं करेंगे बिकॉज दे आर एंग्री विद अस. ये मैंने सब कुछ हमारे परिवार में भी देखा है, हमारे बाहर के परिवार में देखा है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. कभी भी गलती से भी आपकी महत्वाकांक्षाएं बालकों पर लादना नहीं, उनसे बैठकर डिस्कस करना, स्पेंड आवर्स टुगेदर. बेटा व्हाट यू वांट टू डू, वो कुछ बताएगा आपको क्या बनना है उसको. बचपन में कहेगा मुझे बस कंडक्टर बनना है, वो तो बचपन की मजाक की बात है, मुझे ना ड्राइवर बनना है बस का, ऐसा बोलेगा वो. लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी धारणाएं बदलेगी, तो वो कहेगा कि पापा मुझे ना यू पुट मी इन एप्टीट्यूड टेस्ट, आई वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड मेरा एप्टीट्यूड क्या है. तो यू स्पेंड मनी इन दैट, सेंड हिम फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. और जान लीजिए साइंटिफिक तरीके से आपका बालक का हित किस में है. और आजकल तो इतना अच्छा साइंस है, वो बता देते हैं कि ये बच्चा एडमिन में आगे बढ़ेगा, उसको आप एडमिन में स्कोप दीजिए, ही इज एडमिनिस्ट्रेटर. और बताएंगे इसका ये फौजी तरीके का लड़का है, इसको फौजी में डाल दीजिए आप, ये इंजीनियर लड़का है, ये टेक्निकल आदमी है, ये फाइनेंस का पैसा है, इसमें पैसे में गति है, उसको उसमें डालो उसको आप. तो ये सब करके आप उसका करियर चुन लीजिए. लेकिन ना अपनी अपनी अधूरी इच्छाएं बालकों के माध्यम से पूरी करने का प्रयास मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए. एक प्रश्न का उत्तर मैंने दिया. और
ये दो तीन लोगों ने अपने हैंड रेस किए हुए हैं,
प्लीज 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 आई एम रेडी टू आंसर.
सिद्धार्थ यादव जी, गंभीर बिष्ट जी, आपने हैंड रेस किया है, कोई प्रश्न है आपके तो पूछिए प्लीज.
गुड इवनिंग एवरीवन एंड नमस्ते गुरु जी.
नमस्ते.
मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना था, मेरा 6 वर्ष का बालक है.
यस.
एंड बिकॉज ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बच्चे बहुत घर में रहकर बहुत एरोगेंस हो गए हैं, तो इनकी एरोगेंस से हम लोग कैसे उसको दूर कर सकते हैं और कैसे इस चीज में उनकी हेल्प कर सकते हैं हम लोग.
अभी मैं आपको एक डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूँ. फादर आई सर्जन है, मदर भी आई सर्जन है, दो बच्चे हैं, एक साल 365 डेज वो ना घर के बाहर ही नहीं पड़े बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ कोरोना. और उनके बच्चे पोएट्री लिख रहे हैं और जूम पे दे आर गिविंग प्रेजेंटेशंस, दे आर ड्राइंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड प्रेजेंटिंग इन द जूम मीटिंग्स. तो मैंने उनको पूछा, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो? तो कहते हैं मैं उनकी घर उनके साथ घर में खेलता था. आई वॉज प्लेइंग विद देम इन द हाउस. आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड बैडमिंटन, आई प्लेड रनिंग अराउंड इन द हाउस, आई प्लेड हाइड एंड सीक विद देम, आई प्लेड दिस थिंग विद देम, दे वांटेड टू पेंट समथिंग, आई पेंटेड विद देम. हाँ, थोड़ा एफर्ट लिया उन्होंने. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना काम करते रहते हैं और बच्चों को अपने आप चाहते हैं कि दे गेट एंटरटेन ऑन देयर ओन. नो नो, द सिचुएशन इज लिटिल डिफरेंट नाउ. दे कांट एंटरटेन देमसेल्व्स. दे नो बट दे कांट. सो समय पर थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज करके आपको कुछ अलग करना होगा. और जब वो अलग उन्होंने किया ना, आई कुड सी दैट कोरोना पीरियड में उनकी बेटी इतनी स्मार्ट बनी हुई है. सो स्मार्ट शी बिकेम. शी वॉज प्रेजेंटिंग एंड इन वन ऑफ द डॉक्टर्स पिकनिक ना, वी ऑल गॉन टू सम पिकनिक इन बिटवीन इन अ स्मॉल प्लेस इन अ कोरोना एरिया ऑल्सो. तो शी टोल्ड मी, देखो आप ध्यान सुने, उसको माइक दिया गया, बेटा फीडबैक दे दो, आपको कैसा लगा पिकनिक. वह कहती है कि मैंने पहली बार जिंदगी में पहाड़ से उगता हुआ सूर्य देखा, नहीं तो हमेशा मैंने बिल्डिंग से ऊपर सूर्य आता हुआ देखा हुआ है. व्हाट लाइफ वी आर लिविंग इन सिटी, दिस इज द रियल लाइफ. ऐसे एक 12 साल की बेटी ने फीडबैक दिया. आई टोल्ड डॉक्टर सच अ वंडरफुल ग्रोन अप शी इज नाउ, मतलब हाउ शी हैज ग्रोन अप ब्यूटीफुली. क्या किया जादू किया आपने इस काल में? तो उन्होंने बताया कि मैं उनके साथ खेला, आई जोक्ड विद देम, आई लाफ्ड विद देम, I helped them to write poetries. I helped them to paint pictures. We played at home. हाँ, तो आप उनके साथ अभी बच्चे बन जाइए, तभी वो चिड़चिड़ा बंद हो जाएंगे. उनको कैसा है, आप क्या चाहते हो? बेटा यू प्ले ना, आप ये देखो वो देखो, टीवी पर ऐसा देखो, ये गेम खेलो, ये आपने मैंने आपको वो ला के दिया है, क्यूब ला के दिया है, उसको आप खेलो, बट यू डू इट ऑन योर ओन, ऐसा बोलते हैं हम लोग. और वो ग्राउंड घर में आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं ओपन एयर वाला, तो आपको उनके साथ में खेलना होगा. प्लीज प्ले विद देम. इट मे अपियर वेस्ट ऑफ टाइम एंड नॉनसेंस फॉर यू, बट एट दिस टाइम इफ दे आर स्टिल रेस्ट्रिक्टेड टू गो आउट इन द गार्डन, प्लीज प्ले विद देम.
इट्स एन इन्वेस्टमेंट.
इट इज एन इन्वेस्टमेंट. माय वाइफ इज प्रॉम्प्टिंग मी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. इट मे अपियर फॉर अ प्रोफेशनल अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि मैं आई सर्जन हूँ और मैं गुल्ली डंडा खेल रहा हूँ मेरे बेटे के साथ. नहीं, इट इज इम्पॉर्टेंट. इट विल सेव द माइंड ऑफ योर चाइल्ड.
थैंक यू सो मच.
यस
गंभीर विश्व जी, आपने भी हैंड रेज किया था, प्लीज अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना.
यस
मिसेस शिखा राठौर, आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप भी पूछ लीजिएगा.
मेरा प्रश्न ये है
yes.
प्रभु जी कि आजकल टीनेजर्स का जो रूटीन है ये बहुत ही अजीब सा हो गया है. रात को बहुत लेट तक जागते हैं और सुबह फिर समय पर उठते नहीं है. पूरा रूटीन इनका अपसेट सा हो रखा है. तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं. देखो बच्चे जो है ना वो बुद्धिमान होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. इट मे नॉट बी, मतलब हमारे दृष्टि से उनका परफॉर्मेंस स्कूल का अच्छा नहीं तो इतने बुद्धिमान ऐसा नहीं, वो समझना उनको स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत रहता है. दे आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. हाँ तो अभी उनको जरूरत है खाली एजुकेशन की. जैसे हमारे अस्पताल में हम लोग स्पिरिचुअल केयर देते हैं, हम लोग क्या उनको पूछते हैं, पहले लाइफ स्टाइल का एक फॉर्म भरते हैं. उसमें क्या लिखते हैं, कितने बजे उठते हो, कितने बजे नाश्ता करते हो, कितने बजे लंच लेते हो और व्हाट टाइम यू टेक डिनर. तो उससे उनको पता चल जाता है कि बेटा ये 12 बजे ब्रेकफास्ट ले रहा है और 4 बजे लंच ले रहा है और रात को 1 बजे डिनर खा रहा है और रात को 2 बजे सो रहा है, सुबह 11 बजे उठ रहा है ब्रश करते हुए. तो हम लोग वहीं से बातें करना शुरू कर देते हैं. हम लोग क्या करते हैं, एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ मेडिकल पीपल, उनको बताते हैं कि शरीर का जो रचना है ना, बायोसाइकिल, वो कैसे चलता है और उससे क्या क्या नुकसान होता है. अगर आप गलत करोगे, अगर आप नेचर के क्लॉक के अनुसार चलोगे तो क्या लाभ होते हैं और वो नहीं करने से क्या नुकसान होते हैं, ये उनको आप समझाएंगे साइंटिफिकली ना, दे विल अंडरस्टैंड. क्योंकि हमने यहाँ लोगों को समझाया है ना, हमको पता है 100 में से 60-70 लोग समझ जाते हैं, शायद 10 में से 3 लोग नहीं समझेंगे. ठीक है, परसेंटेज सेम है, लेकिन आपको साइंटिफिक होना चाहिए. कल इतना नहीं कहना चाहिए बेटा हमारा कल्चर तो जल्दी उठने का है, तुम तो लेट होते हो, इससे वो नहीं मानेंगे. आपको बताना है कि शरीर में एक केमिकल होता है अर्काइंस नाम का, वो अर्काइंस जब होते प्रोड्यूस होते हैं तो ब्रेन डिप्राइव हो जाता है, लिवर फंक्शन लो हो जाता है, किडनीज कम फंक्शन करती है, आपकी वाइटलिटी कम हो जाती है, आपका परफॉर्मेंस कम हो जाता है. आपको समझाना पड़ेगा इस सब साइंटिफिक बातों से, तो तुरंत समझ में आएगा उनको, क्योंकि नोबडी वांट्स टू डिस्ट्रॉय वंस हेल्थ. और आपको ये समझाना पड़ेगा कि जल्दी छुपने, अभी फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू वन सॉल्यूशन. ओके, जो व्यक्ति 9:30-10 को सोता है उसका लिवर डिटॉक्स 10 PM to 2 AM तक होता है. हर व्यक्ति का लिवर डिटॉक्स का एक टाइम रहता है, सोने के बाद में बॉडी अपने आप उसको डिटॉक्स करती है, उसका टाइम 10 to 2 AM होता है. फिर किडनीज का एक टाइम होता है, एक लिवर का टाइम होता है, हर एक का एक एक टाइम होता है, हार्ट का एक टाइम होता है, सब जगह का एक टाइम होता है, झाड़ू मारने का, क्लीन करने का एक टाइम होता है. अगर आप बेटा 2 बजे सो जाओगे तो आपका लिवर डिटॉक्स होगा ही नहीं क्योंकि उसका टाइम चला गया है. और आप सुबह उठोगे तो ये होगा, ऐसा इसका पूरा एक साइकिल है बॉडी का, वो आप समझाएंगे ना, नो चाइल्ड विल वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय देयर लिवर, प्लीज अंडरस्टैंड. आपको खाली बताना होगा स्टडी करके कि एग्जैक्टली होता क्या है. सुबह 4 बजे आप उठोगे तो क्या होगा, 5 को उठोगे तो क्या होगा, सूरज के उगने के बाद उगोगे तो क्या होगा, इसे समझाएंगे ना, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड. अभी अगर मैं आज रोज 4:30 को उठता हूं, मैंने पूरा स्टडी कर लिया है कि क्या लाभ है उसके, इसलिए मैं कन्विंस्ड हूं, इसलिए मैं रोज उठता ही हूं 4:30 को. तो मेरा भी टारगेट है मॉर्निंग का, मेडिटेशन का. तो ये कैसे, मैं भी एक जवान लड़का था तभी, 20 साल का लड़का था तब मैं हरे कृष्ण में आया, तभी भी मैं ऐसा संघर्ष में बालक था, एक एंग्री यंग मैन था, मैंने आपको बताया कल. लेकिन आज मैं इस नतीजे में कैसे पहुंचा हूं कि मैं 4:30 को उठूंगा. पहले भी जल्दी उठता था, कॉलेज में भी जल्दी उठता था मैं 4:00 को, क्योंकि मुझे बताया गया था.
हाँ,
वो कैसा अपने आप पता नहीं कौन म्यूट करता है उसको, आई डोंट नो हु इज म्यूटिंग इट, बट एनीवेज. तो जब मैंने मेडिकली ये सब कुछ स्टडी किया तो मेरे ही हित के लिए मैंने अपना ही टारगेट बना लिया. वैसे आप अपने बालकों को, अगर उनका रूटीन सबका बिगड़ा हुआ, मैं जानता हूँ सब यंग लड़के 11 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं और आप उनको बोल नहीं सकते कुछ उनको, बट आप उनको ना एजुकेटिव प्रोग्राम दिखाइए, एजुकेशन दीजिए, और बार बार टोकिए मत उनको, अरे बताइए बेटा अच्छा रहता है ऐसा करेंगे तो अच्छा, तो फिर अपने आप समझ में आएगा. तो
प्रभु जी एक मिनट, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अब जो स्पीकर को म्यूट कर रहे हैं आप कृपया ना करें, आपका वो सबको माइक म्यूट हो गया हमारा ज्वाइंट.
ओके एनी अदर क्वेश्चन?
चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, हाउ टू हैंडल अ डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर अमंग ग्रोन अप चिल्ड्रन.
फेल्यूर इज वेरी कॉमन, सबसे पहली बात है आप उसके एक्सेप्शन नहीं हो. भले आप रैंक होल्डर होंगे तो आपका बच्चा फेल हो सकता है, और फेल होना पाप नहीं है. पहले माता पिताओं के मन से ये निकाल दो, मेरा बच्चा फेल हो गया, आसमान टूट गया, मैं अभी कैसे मेरी माँ को मुंह दिखाऊं, कैसे मेरे बहन को मुंह दिखाऊं, नंदी को मुंह कैसे दिखाऊं कि यही पढ़ाई की थी क्या उसने. ये सब हमको पहले बाधा होती है उसकी. बालक का फेलियर तो बाजू में है, उसका परिणाम मुझ पर क्या होगा इससे मैं एंग्री हो जाता हूं. तो सबसे पहले बालक फेल हो सकता है, इस बात को एक्सेप्ट करो. पहले फेल्यूर एक्सेप्ट करना है आपको, बालकों को बाद में. अगर आपके मन में डिनायल है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो बालक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. इसलिए पहले पति पत्नी ये बात एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है आसमान टूट नहीं पड़ा है, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग पहले फेल हो चुके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर बच्चों को हौसला दो कि बेटा आपने कुछ भयंकर पाप नहीं किया है कि आप फेल हो गए, हम आपके साथ हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम दोबारा क्लास जाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे, कमजोर सब्जेक्ट में हम अच्छे आपको सपोर्ट करेंगे, आप चिंता मत करना, बेस्ट ट्यूटर लेके आएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको अगली बार बैठ के अच्छे मार्क लाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर पाओगे उसको, यू विल डू इट, डोंट वरी. मे बी आप अभी बीमार थे, आपको बुखार आया था, वो बारिश आ रही थी, कोरोना था, ये था वो था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ओके. दुनिया आपको हंसेगी, हम नहीं हंसेंगे. दुनिया आपको ताने देंगी, हम नहीं देंगे आपको, हम आपके साथ हैं. ऐसे कहने मात्र से बालक का हौसला बढ़ेगा. अक्सर ना फेल्यूअर्स को माता पिता स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए बालक नहीं स्वीकार कर पाते, इसलिए बालक फिर नाइन्थ में सुसाइड कर लेते हैं, टेंथ में सुसाइड कर लेते हैं. क्यों करते हैं बताओ, व्हाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज उनको पता है कि मेरे माता पिता ये झेल ही नहीं पाएंगे, मुझे तो मारे डालेंगे वो, उससे बेहतर मैं ही मर जाऊं तो अच्छा है. ऐसा माहौल घर में बना के रखते ना कि बेटा सोचता है कि मेरे इतने फॉरगेट फेल्यूअर, मतलब फॉरगेट एक्चुअल फेल्यूअर, कम मार्क, मेरे से 85% मार्क्स भी मेरे पिताजी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनको 95-98 चाहिए मुझसे, मेरे मुझे पीटेंगे वो, उससे भी सुसाइड हुए हैं कई चीजें कई बार. और आपको क्या बताऊं, दुख भरी घटनाएं कि बेटा फेल डिक्लेयर हुआ और उसने माता पिताओं को मिलने के पहले आत्महत्या कर ली, फिर माता पिताओं ने री इवेल्युएशन में डाला पेपर उसका, तो बेटा फर्स्ट आया, फर्स्ट. लेकिन घर के स्थिति की वजह से इतनी बुरी स्थिति माता पिता ने बना के रखी थी कि बेटे ने सुसाइड कर ली. क्यों? ही हैड नो कॉन्फिडेंस कि मेरी माता पिता मुझे एक्सेप्ट करेंगे इस स्थिति में, इसलिए ही लॉस्ट इज लाइफ, ही टुक अवे इज लाइफ. और हकीकत क्या थी कि वो री इवेल में डाला उसको, तो वो फर्स्ट आ गया. ये हकीकत है, इट इज ट्रूथ. सो हु हैज टू चेंज, टेल मी? पेरेंट्स हैव टू चेंज. और आजकल के इतिहास में ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स हैं, माइक मिल्कन हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो कॉलेज के फेल्यूअर्स हैं, आउट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर इन कॉलेज. आज उनका नाम सक्सेसफुल लोगों में लिया जाता है. एडिसन की माता, एडिसन को उसके स्कूल से निकाला गया था विथ वन लेटर, योर चाइल्ड इज यूजलेस चाइल्ड, वी कांट ट्रेन हिम, प्लीज टेक हिम होम. वो खत सील करके बच्चा घर पे लेके आया, माँ को दिखाया, तो बेटे ने पूछा माँ ये खत में क्या लिखा है? वो बोलो कहती है कि इसमें लिखा है कि आप बड़े स्पेशल चाइल्ड हो, इसको हमारे सिंपल स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते. माता ने अपने बालक को बताया कि इस पत्र में लिखा है कि आप बड़े स्पेशल चाइल्ड हो, हमारे सिंपल स्कूल में हम उसको नहीं पढ़ा सकते. और माता ने मेहनत करके उसको घर पे सिखाया. हाँ, और कई सैकड़ों बार वो बल्ब बनाने में फेल हो गया, तभी भी इतने फेल्यूर्स आए, और एक दिन उसने बल्ब बनाया और आज दुनिया रोशन है उसकी वजह से. ये एक एडिसन की हिस्ट्री है, ऐसे बहुत एडिसन दुनिया में हैं जो कई बार फेल हो चुके हैं लाइफ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर माता पिता ऐसे कमजोर, सो कॉल्ड कमजोर बालकों को उनके कमजोर समय में अगर सपोर्ट करते हैं तो बालक कभी भी आगे जाकर अपयशी नहीं होगा, यशस्वी होगा। बालक के यशस्वी होने की चाबी ना आप लोगों के, हमारे लोगों के हाथ में रहती है, याद रखना इस बात। वी मेक द चाइल्ड फेलियर और सक्सेसफुल, एंड यू कैन मेक द चाइल्ड फील सक्सेसफुल इवन इफ ही हैज फेल्ड बाय होप गिविंग। यू आर सक्सेसफुल व्हेन यू गिव द चाइल्ड होप। डोंट वरी बेटा, लाइफ यहां एंड नहीं होता है। अगर आप नाइन्थ में फेल हो गए मैथ्स में तो लाइफ यहां एंड नहीं होता है। मेरे घर में एग्जाम्पल है, मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन मैथ्स में उसको रुचि नहीं थी। और पापा कहते थे साइंस में चले जाओ, साइंस में चले जाओ। वो बेचारा मैथ्स देख के रोता था। हाँ, उसी घर में मैथ्स में मैं एकदम एक्सपर्ट था, 100% मार्क लाता था, लेकिन हम लोग दो डिफरेंट पर्सनैलिटी है। वो मैथ्स में डाला गया इसलिए वो फेल हो गया, और ऊपर से पापा ने उसको इतना चिल्लाया, उसे सब साइंस ही छोड़ दिया और फिर कॉमर्स में चला गया। वो स्कूल में हर समय ही वॉज स्टैंडिंग फर्स्ट ऑल थ्रू आउट, लेकिन मैथ्स उसको नहीं अच्छा लगता था, उसमें ही डाला गया उसको, और वो फेल्यूअर साबित किया गया कि यू आर अ फेल्यूअर चाइल्ड, एंड एक्चुअली ही लॉस्ट हिज करियर। आज भी मैं जब एनालाइज करता हूं एक पिता के रूप में, तो आई अंडरस्टैंड कि इट इज अ मिस्टेक ऑफ द पेरेंट टू लूज अ ब्यूटिफुल करियर ऑफ अ सन बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसहैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। यहीं पर हमारी और आपकी एक्सपर्टीज की परीक्षा होती है। हाँ देखो, अगर आपका लड़का फर्स्ट आया ना तो आपका कोई स्किल नहीं है उसको हैंडल करने का। ही ओनली हैज मेड इट सक्सेसफुल, व्हाट इज द बिग थिंग अबाउट इट। बट अगर वो फेल होता है तो आपका स्किल कसौटी पे है। व्हाट यू विल डू, हाउ यू हैंडल दैट सिचुएशन। तो ये आप एक चैलेंज अपने आप में लीजिए। डोंट आस्क हाउ डू आई मेक माई चाइल्ड एक्सेप्ट फेल्यूअर, आस्क हाउ डू आई एक्सेप्ट माई चाइल्ड फेल्यूअर। दैट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क। तब जाके आप अपने बच्चों को आराम से उनके अयशस्वी फेल्यूअर से निकाल सकते हैं बाहर आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो तीन लोगों ने और हैंड रेज किया हुआ है। लीजिया सिकंदर, आपका क्वेश्चन है, प्लीज आप पूछिए अनम्यूट करके। लीजिया जी, नीतू यादव, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। रश्मि सुहाग जी, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। विकार सिंह, आप भी कर सकते हैं।
नमस्कार गुरु जी।
हाँ, यस।
मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ एक्चुअली। आपने जब लेक्चर शुरू किया था तो आपने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक लेडी ने डिसाइड किया कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा, फिर उसने लिखा, तो द लेडी डिसाइडेड द करियर एंड अकॉर्डिंगली इट हैपेंड। एंड अभी आप बात कह रहे हैं कि लेट द चाइल्ड डिसाइड। आई मीन
ओके,
एज अ पेरेंट नाउ आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड।
गुड गुड गुड।
कि मैं वो प्लानिंग कैसे करूं अब?
तो वो जो माता थी ना, उसने इंस्पायरिंग बेसिस पे उसको मोटिवेट किया, उसको फोर्स नहीं किया। अगर बालक कहता नहीं मम्मी मुझे नहीं बनना है लेफ्टिनेंट कर्नल, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो माता उसको फोर्स नहीं करती। लेकिन उसका भाग्य था कि उसका एम्बिशन और बेटे का एम्बिशन मिल गया। हाँ, तो आपको कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भी वही कहता हूं कि आप पालक को मोटिवेट कीजिए, फोर्स मत कीजिए। देखो, मोटिवेशन में और फोर्स में अंतर होता है। अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर लादना और उसको मोटिवेट करना, इसमें बहुत अंतर होता है। आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए और देखिए वो क्या चाहते हैं, उसमें उनको आप एनकरेज कीजिए। आपकी महत्वाकांक्षा अगर उसके साथ जुड़ गई तो आप लकी हो, लेकिन अक्सर वो नहीं जुड़ती है। दिस इज माई एग्जाम्पल। वो मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया था, वो संस्कार के लिए दिया था। मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया था, डेफिनेटली इट वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह मैंने बताया था उसमें, लेकिन मेरा मैसेज उसमें यह है कि संस्कार कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए आपको वैसे प्लानिंग करना है, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सोल्जर बने या प्रधानमंत्री बने, वो बात अलग है, वो एक्सटर्नल अचीवमेंट है। इंटरनली वो व्यक्ति कैसा बना, इंसान कैसे बना, वो उसके लिए आप प्लान कर सकते हो। और करियर के विषय में आप उसको मोटिवेट कीजिए, उसको फोर्स मत कीजिए।
ठीक है, थैंक यू
गुरुजी। अराउंड नाउ, हमारे समय पे वो 15 ईयर्स था,
अभी भी वही है,
10th ग्रेड था, लेकिन अभी जल्दी भी कर लेते हैं, 12th के बाद में भी कर सकते हैं, 12 ईयर्स मतलब 12 ईयर्स ऑफ एज के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 15 ईयर्स इज द बेस्ट। जब वो 10th ग्रेड में आता है ना, डिसीजन पावर मतलब उसको डिसीजन करना है, साइंस जाना है, कॉमर्स जाना है, कि आर्ट्स जाना है, कि कुछ एनडीए में जाना है, तो उस टाइम पे आप उसका वो एप्टीट्यूड टेस्ट कर लीजिए।
एंड व्हेन चाइल्ड इज इन द वूम ना, बच्चा जब गोद में पेट में रहता है तब काफी सारे संस्कार हम उनको दे पाते हैं, पर बच्चा जब बाहर आ जाता है तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब अभी के जमाने में और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल इतने स्मार्ट है कि एक दो साल में ही उनको बहुत ज्यादा मतलब समझ होती है और बहुत ज्यादा चीजें सीख लेते हैं, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं। एट द एज ऑफ टू ऑल्सो दे कैन से कि मुझे ये ड्रेस पहननी है या वो ड्रेस पहननी है। पहले वाले बच्चे ऐसे नहीं थे, तो जो पहना हो पहन लेते थे। तो इसके लिए अभी मतलब बहुत कहा जाता है कि जो संस्कार करना है वो पेट में करो, उसके बाद में देन दे हैव देयर ओन ओपिनियंस। सो व्हाटएवर संस्कार वी हैव टू डू इट इज बिफोर, देन लेटर ऑन वी हैव टू जस्ट सपोर्ट देम एंड असिस्ट देम।
और कोई प्रश्न है?
गुरुजी, ममता कुमारी जी ने अपना हाथ रेज किया हुआ है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। विकार सिंह जी, आपने हाथ रेज किया है, आप क्वेश्चन पूछिए अपना।
नमस्ते गुरुजी।
यस
सर, मेरा 9 साल का बेटा है सर, अगर वो रात को 9 बजे भी सोता है तो अगर मैं सुबह उसे 4 बजे भी उठाऊं तो उठ जाता है, लेकिन वो दिन में नहीं सोता।
तो आपकी क्या इच्छा है? आप क्या चाहते हो पहले बताइए, मैं आप क्या चाहते हो?
नहीं सर, उसे सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए?
अगर आप मेडिकली मुझे पूछोगे, आयुर्वेद के अनुसार पूछोगे, तो बच्चों को जितना हो सके दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर वो थक जाते हैं, पढ़ाई इतनी हेवी होती है, तो उनको आप विश्रांति दीजिए। लेकिन अगर वो नहीं चाह रहा है और थकाव भी नहीं है, प्लीज डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू स्लीप इन द डे। दिन के लिए, दिन में आप उनको सोने के लिए फोर्स मत करना, सो जाओ ऐसा मत करना, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, ताजगी है, खेलने की इच्छा है उसको, तो उसको दिन में जगह रहने दीजिए। अगर वो थक जाता है तो सुलाइए उसको, और अगर वो 4 बजे अपने आप उठ जाता है, आप बड़े भाग्यवान पालक हो, भाग्यवान माता पिता हो, बहुत भाग्यवान हो आप, मैं कह सकता हूँ, जरूर कह सकता हूँ। अगर 9 बजे सो रहा है और 4 बजे उठ रहा है, यू शुड सेलिब्रेट दैट योर चाइल्ड इज एज अ वंडरफुल वैदिक चाइल्ड। लेकिन बालकों को जबरदस्ती नींद से उठाना नहीं चाहिए,
8 से 10 घंटा
उनको, बालकों को मेडिकली स्पीकिंग 8 से 10 घंटा नींद की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका ब्रेन जो है ना वो ग्रोथ में होता है, उनका ब्रेन हमेशा गर्म रहता है, ऐसे हाथ लगाएगा ना यहाँ पर ऐसा गर्म लगेगा, क्योंकि वो ग्रोइंग एक्टिविटी, इट्स अ मल्टीप्लाइंग ब्रेन। उस समय पर जितना नॉलेज आप लेते हो, सुनते हो, उसको स्टोर करने में, एसिमिलेट करने में, प्रोसेस करने में बहुत शक्ति खर्च होती है और दिमाग उसमें बहुत खर्च होता है, तो उसमें नींद में उसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ ब्रेन की होती है। इसलिए छोटे बालकों को ग्रोइंग एज में नींद से उठाना नहीं चाहिए जबरदस्ती, उनको पूरी नींद देना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो ऐसे भी कहा गया कि मेडिकल स्टूडेंट को 9.5 आवर्स नींद की जरूरत है, इतनी वो नॉलेज एक्सेप्ट करता है, सो मच बुक्स, सो मच नॉलेज, सो मच इंफॉर्मेशन ही हैज टू एक्सेप्ट। तो प्रोसेस करने के लिए हमें कहा गया है कि फर्स्ट MBBS से लेकर आखिर तक उसको 9.5 आवर्स पर डे सोना चाहिए, तब वो जो सुनेगा वो याद रखेगा उसको। लेकिन इतना पढ़ाई होती है आजकल कि हमारे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एवरेज लोग 5 आवर्स होते हैं, इससे सब लोग ऐसे दुबले पतले निस्तेज नजर आते हैं। तो एक डायकोटोमी है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन लाइफ में देख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए समहाउ वी हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। हम लोग क्या करते, मैं क्या करता था जब मुझे सब पता चला, तो मैंने फिर वो 8 घंटे जल्दी सोना आरंभ किया, मतलब इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग एट 1 o'clock एंड गेटिंग अबाउट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं 9:30-10 को सो के 6 बजे उठता था, मतलब 5 बजे उठता था, क्योंकि मुझे पता था कि जल्दी सोऊंगा और जल्दी उठूंगा तो आई विल बिकम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आई वॉज नोइंग दैट, समहाउ आई वॉज कन्विंस्ड। इसलिए हमारे कॉलेज के लड़के लोग जब पढ़ाई शुरू करते थे तब मैं सो जाता था, और जो पढ़ाई करके सोते थे तब मैं उठ जाता था सुबह 4 बजे एंड दे यूज्ड टू जस्ट गो टू बेड दैट टाइम 3:30 AM और वो 8:30 9:30 को उठते थे और मैं 4 बजे थोड़ा जप करके पढ़ाई करना आरंभ करता था। मतलब मैं भी उतने घंटे सो रहा हूँ, वो भी उतने घंटे सो रहे हैं, लेकिन मैं सोने के घंटे का जो टाइम टेबल है वो बदली करके बेस्ट आउटपुट का लाभ लिया मैंने उसके उस समय। तो ये नींद के विषय में आपको बहुत जानकारी होना जरूरी है। डिप्राइवेशन ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ, ब्रेन एंड हार्ट।
ठाकुर जी ने अपने हाथ रेस किया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। ईशु ठाकुर जी,
गुड इवनिंग मिसेस कौशल, नमस्कार।
यस
सर, मेरा क्वेश्चन है, एक बच्चा है छोटा सा 4-5 ईयर्स का, लेकिन वो बहुत ही जैसे मूडी है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जैसे कि जो फाइनल एग्जाम होता है उसको सब कुछ आता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं करता है फाइनल एग्जाम में। इनफैक्ट वो जब उसका मन होगा और रात को 2 बजे उठ के पढ़ लेगा, नहीं होगा तो 2 दिन भी नहीं पढ़ेगा।
उसके साथ आप ना बैठिए, उसके साथ बैठिए, उससे बातें कीजिए, वो आप अगर उनको मौका देंगे ना तो वो ओपन अप हो जाएगा। वो ना उसको मौका नहीं मिल रहा है, वो क्या चाहता है उसको एक्सप्रेस करने का। उसके मन में कुछ दुख होगा या कुछ बोर्डम होगा तो वो उसको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। समय बिताइए उसके साथ, बैठिए उसके साथ, थोड़ा फ्रेंडशिप बनाइए, उसके मन की बात थोड़ा सा खोदने का प्रयास कीजिए। ही विल ओपन अप, डेफिनेटली ओपन अप।
हाँ,
तो मुझे प्रश्न आपको पूछना है, समझो वो जब मर्जी पढ़ाई करता है, आज मूड होगा तो करेगा, कल नहीं करेगा, लेकिन फाइनली एग्जाम में मार्क्स कितने कैसे लाता है वो? नहीं नहीं, मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आपने, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वो अपने मर्जी से पढ़ाई करता है लेकिन वो रिजल्ट क्या लाता है वो बताइए।
अभी तो छोटा
है, कितने दिन से है ये प्रॉब्लम उसका? कितने दिन से ये प्रॉब्लम है उसका?
सर उसका बचपन से ही, नर्सरी से लेके अभी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, लेकिन उसका वही है अभी तक।
यू हैव टू टेक हिम टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनके आप व्यावसायिक मदद लीजिए, टेक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि ये समथिंग इज देयर इन चाइल्ड्स माइंड व्हिच दे विल डायग्नोस। उसको लेके जाइए और वो चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है। Yes. Okay, so we'll end here. Hare Krishna.
I will request just one more minute, Prabhuji.
Yes.
I'll request our Zonal Vice President, Mrs. Sheila Tiwari, to just say a few words. Mrs. Tiwari, please.
Yes, mera video thoda sa, pata nahi, kuch is tarah ho gaya hai.